ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हर दिन बाबा हम बच्चों को हीरों का हार पर तैयार करके दे देते हैं, अपने गले का हार तो बनाते ही हैं, परंतु समय के धागे में दिव्य गुणों के मोती, हर सर्व गुण संपन्न बनने के लिए दिल से धारण करने वाली बातें, तो जो ऐसे बाबा के दिए हुए उपहार को सर्वगुण संपन्न बनने के सहज साधन को साधना द्वारा स्वरूप में ले आते हैं, तो गले का हार दूसरे भाव में माला भी है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान भी है, माला भी बार बार फेरनी पड़ती है, रिपीट होती है। ड्रामा का ज्ञान भी आदि मध्य अंत का है। तो जिनके पास बाप पिता परमात्मा का पूर्ण परिचय, उनको ज्ञानित्व आत्मा कहते हैं। भगत क्योंकि पूरा परिचय नहीं है, तो संबंध भी संपूर्ण नहीं है, तो उनको संबंध के सुख का अनुभव नहीं है, इसलिए हठ योगी है। हम आनंद रस लेते हैं, संबंध का सुख लेते हैं, योग युक्त होकर के बाबा के गले का हार बनकर के बलिहार जाते हैं, तो सर्व संबंध का सुख और ड्रामा का ज्ञान हमको विजयी बना देते हैं, बाबा के प्यारे रतन बन जाते। तो जिन आत्माओं को बाप भगवान में निश्चय भी हो, देह अभिमानी बन भी जाए, पर अगर ड्रामा के ज्ञान को गहराई से नहीं समझा है, तो हार जीत के खेल में ही समय टाइम चला जाता है। बुद्धि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, एक ही सीन अगर ड्रामा का देखा है तो पिछली कहानी का पता नहीं है, तो क्वेश्चन उठते हैं। तो बाबा हमको आदि मध्यंत का ज्ञान दे करके, ड्रामा की नॉलेज सुना के, क्यों क्या के क्वेश्चन से निकाल करके, फुल स्टॉप, और साक्षी दृष्टा साथी बना के साक्षी दृष्टा बना देते हैं। और अगर दृष्टा साक्षी दृष्टा बन के देखते हैं और बाबा को साथी बना के देखते हैं, तो आनंद ही आनंद है। फिर तो एक ड्रामा देख रहे हैं ना, तो प्रेरणा देने वाला ड्रामा, अचल अडोल बनाने वाला ड्रामा हमको साक्षी दृष्टा होते हैं, तो कैसा भी सीन है, कैसे भी त्रिघन है, कैसी भी आपदाएं हैं, उसमें आत्मा घबराती नहीं है। पता ही इसी ये ड्रामा की कहानी पहले से पता है और एक्ट फिर इंटरेस्ट से देखते हैं। जिसने पहले कहानी पहले पढ़ ली है उसको पहले से ही पता है कि सीन के बाद कौन सा सीन आने वाला है। आदि में देवी दैवी स्वराज है, द्वापर में फिर पूजनीय से पुजारी बन जाते हैं, कलयुग में पतित भिखारी बन जाते हैं, पतित बना रावण का राज, फिर अनेक प्रकार से ड्रामा में हीरो बनने का चांस देते हैं। अंत के समय बेशक इस समय हीरा और हीरो दोनों बनते हैं। सतयुग में बेहद के नाटक में पार्ट प्ले करते हुए भी ड्रामा में वो ड्रामा का नशा और निश्चय नहीं होता, पता ही नहीं है, तो बिल्कुल डिटैच्ड है। इसलिए सबसे सर्वोत्तम युग ये है जबकि बाबा का ज्ञान उस आधार पर योग और बेहद के नाटक का खेल देखने में अच्छा अडोल रहते हैं, न केवल अच्छा अडोल परंतु आनंद स्वरूप बन के रहते हैं। तो प्रेम माना बाबा के साथ संबंध और योग और ओम शांति माना मैं आत्मा, सब चीजों से न्यारी फुल स्टॉप लगाकर न्यू बिगिनिंग। ओम शांति। आज 6 जून की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठ, एकांत में बैठ, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। तो तंतु इसमें चले जाते हैं, बीज रूप कैसे बनूं, बिंदु बन जाऊं, न्यारा नहीं हो सकता। तो बाबा से बातें करेंगे तो बाकी बातों से न्यारे हो जाएं। तो मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की नॉलेज। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति में हलचल न आए, बल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अंगद अचल अडोल। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो ड्रामा देख रहे हैं, कर भी रहे हैं, आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीता ओम नमो शिवाय, मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। वो एक सहारा बनता है तो सब प्रकार की परिस्थितियों में सहारा बने। ओम शांति। बच्चे बच्ची रीति समझते हैं, कौन सी बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दुनिया पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है और पावन दुनिया की आदि हो रही है। और कल बताया था कि मैं जो ये पावन दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूँ, तुम मेरी मददगार हो। तो बाप कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को भी यही डायरेक्शन मिलती है व श्रीमत मिलती है, या आदि और अंत का ज्ञान कौन देते हैं? ऊंचे तो ऊंचा भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है, ये नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो पतित है तो पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। पतित कहा जाता है विकारी को, तो बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्यम दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी हैं कि अब पतित हैं, परंतु पूरा बुद्धि में बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, फिर भी पतित बना छोड़ते नहीं है। हम मंदिर में जाकर के फाइल जमा करके आते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल काम कृपा करो भरता। ये उस समय रियलाइजेशन है। मंदिर में वो दिव्यता जो देवताओं के गुण थे उसकी रियलाइजेशन है, तो अपना दर्पण नजर आता है। बाहर आए भूल गया, घर आए मोह और विकार नेचुरल हो गए, नेचर इमर्ज हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं जो पुकारते हैं पतित है, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं, और बुलाते भी हैं परंतु पतित बना छोड़ते नहीं। अभी तुम समझते हो, सारी बात है पावन बनने की। ये समझाने वाला कोई तो चाहिए ना, यानी बनना ही है। इच्छा रखी, प्रेयर किया, भगवान से प्रार्थना की, फाइल जमा करके आए, वापस क्यों ले लेते हो? समझने की जरूरत है, बनना ही है पावन। ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, समझाने वाला तो एक ही है। बाकी ये जो गुरु लोग हैं, ये किसी को पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, क्यों नहीं बना सकते? जन्म जन्मांतर के लिए नहीं बना सकते, यानी अपने संग से साधु बन गए, सन्यासी बन गए, नियम मर्यादा का पालन करेंगे, पर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्रता के संस्कार एक परमात्मा पतित पावन ही बना सकते हैं। तुम्हारा इसीलिए सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वो होशियार होते हैं, तीखे होते हैं। ड्रामानुसार ये नूंद है, तुम्हारे में भी महावीर बना चाहिए। जब भी बाबा महावीर कहते हैं तो अंगद को हमेशा महावीर कहते हैं, अचल अडोल रहने वाला। हनुमान को भी महावीर कहते, भक्ति मार्ग वाले। और वो अच्छा लडोल रहना आएगा कैसे, बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं सवेरे उठ करके याद करो, वो समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है, अमृत वेला कहा जाता है, मीठा टाइम। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मेरे मन, तो बाप भी कहते हैं सवेरे उठ के बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए, पहले बैठ के कहा मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, फिर दिन में याद करना है, याद में रहते हुए बुद्धि जो है भटके नहीं, कहां अटके नहीं। तो कोई सिचुएशन आई तो किसी को कैसे समझाएं, खुद को समझा के दूसरे को समझाएं। पर दिन का वर्ग भी ये ध्यान और योग को अप्लाई करना है, ये ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाए। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत शुद्ध रहता है, दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि भी भक्ति भी प्रभात को करते हैं, वो तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में बल रहे, बुद्धि का योग, जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, जिस देवता का पुजारी है उसके साथ बुद्धि का योग होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं। भावना भक्ति भले की, पर सारा दिन जिसका भी पुजारी है, भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं। ये बनारस में जो काशी कलवट की बात बाबा कहते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं, वो भक्ति मार्ग की बलि है। और ये ज्ञान मार्ग की बलि है, उसमें भी अपने को समर्पण करते हैं। इसका मतलब है सर्व समर्पण नष्ट हुआ, तो वो भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। भक्ति मार्ग में इसमें कुछ फायदा नहीं। अब ये मुश्किल होते भी आसान क्यों है? यह तो मुश्किल, फिर इजी राजयोग है, क्योंकि गाइड करने वाला हमको हर क्षण हर दिन कोई न कोई तरीका बताते रहते। मुश्किल तब है जब हम देह अभिमान में, जब आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है तो मुश्किल बात आसान हो जाती है। वहां पर आत्मा अपने शरीर का घात करती है, शरीर का घात करती है, माना फोर्स से आत्मा शरीर से अलग होती है। और यार तुम भी क्या कर रहे हो, जीते जी मर रहे हो। शरीर से अलग होने का अभ्यास कर रहे हैं। वो कोई ज्ञान नहीं है शरीर का घात करना, जिसको बाबा कहते हैं ये तो अपना जानबूझ करके आत्मा को ज्ञान नहीं है पर भावना बहुत बलवान है इसलिए बलि चढ़ते हैं। वो कह देते फिर आत्मा सो परमात्मा, आत्माभिमानी एक बाप ही बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं। आत्माभिमानी बनना कैसे है, देश से न्यारा बनना कैसे है, और आत्मा सो परमात्मा नहीं है। अगर आत्मा सो परमात्मा तो याद किसको करते हो, वर्षा किससे लोगे, याद पे पाप कैसे कटेंगे। यानी सिर्फ एक पॉइंट बुद्धि में क्लियर हो जावे तो पुरुषार्थ में कंफ्यूजन नहीं हो। भक्ति में फिर जो एक तरफ कहा मैं पापी हूँ, फिर कहा भगवान मेरे पाप नाश करो, फिर मैं कह दिया मैं ही आत्मा सो परमात्मा हूँ। तो यहाँ बाबा हर चीज क्लियर करते, तरीका क्या है, विधि ठीक है तो सिद्धि है, विधि नहीं है तो सिद्धि भी नहीं है। इसीलिए बाप कह देते हैं कि तुम आत्मा सो परमात्मा नहीं हो। आत्माभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। सच्चिदानंद सच बात बताता हूँ, हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये सबसे बड़ा झूठ है। अभी वो समझ रहे हैं हम तो शिवोहम ब्रह्मोहम, अब झूठ में प्राप्ति क्या होगी। रॉन्ग चीज हमने ले ली तो क्योर कैसे होंगे, रॉन्ग रास्ता ले लिया राइट डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचेंगे। तो ये सबसे बड़ी ते बड़ी झूठ है, ये हो नहीं सकता। हाँ बाबा फिर बाप समान बनने की शिक्षा देते हैं, आत्मा सो परमात्मा नहीं है पर ऐसे ही निराकारी स्वरूप और ब्रह्मा बाबा समान, फरिश्ता अशरीरी निरंकारी निर्विकारी स्वरूप। तो बनना बाप समान है पर बाप नहीं बनते, परमात्मा नहीं बनते। दूसरी बात कि कोई भी मनुष्यात्मा कितना भी महान बन जावे किसी को पावन नहीं बना सकते। परमात्मा का टाइटल पतित पावन है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थ को एक होते है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल पहले भी ऐसे हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं है, ड्रामा पर पक्का रहना है। इसको कहा जाता है महावीर। एक्सीडेंट तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या। ये तो ड्रामा में नूंद है, ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। तो क्यों कहा मैं नहीं, जो ड्रामा को नहीं जानते वो देह को याद करके आंसू बहाते हैं, और देह भान और देह को याद करने से कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कलप कलप बनते हो। देवताओं की भी बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे, वहां योग नहीं लगाएंगे, वहां प्रीत बुद्धि, यहां प्रीत बुद्धि है, योग युक्त होकर के उनकी आज्ञा का पालन, ज्ञान प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती, इस हिसाब से बुद्धि में इस प्रीत से देवताओं के बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, उन्होंने इस प्रीत से वो पद पाया है, वहां तो मालूम ही नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता नहीं रहता है, जो प्रीत रख सको, सारे संबंध जोड़ सको, इसीलिए कहते हैं, यानी अभी तो हर संबंध का सुख हम आनंद महसूस करके प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं, वो तो हमारा रिवॉर्ड है प्रेजेंट समय का। अभी बाप ने परिचय दिया है तो बाप कहते हैं, और संग तोड़ मुझे एक साथ जोड़ो। ये विनाश का कॉल तो जरूर है, अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि या प्रीत बुद्धि, तो सतयुग में कोई विनाश भी नहीं है जो कहें कि प्रीत बुद्धि देखते हैं प्रीत बुद्धि। यानी बाबा ने कहा ना, ये कनेक्शन में है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि, ये देवताओं पर नहीं अप्लाई होता, ये इस समय हमारे पर अप्लाई होता है। हमारी विनाश का समय है तो हम महावीर चलडोल कैसे हैं? तो ये विनाश काल तो जरूर है, इस समय ही बाप कहते हैं, और संग तोड़ मुझे एक साथ जोड़ो। तो तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, तुम अभी समझते हो, हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है, सत्व प्रधान बनना है। उसके लिए याद बगैर कोई सत्व प्रधान बन नहीं सकता। तो प्यार, अधिकार और याद से सत्व प्रधान बनने का लक्ष्य। तो बाबा कहते हैं, अगर सत्व प्रधान बनना है तो सर्जन बनकर अपने रोग को देखना है। ध्यान देने वाली बात है, यह नहीं कि विषय विकार मिटाओ, पाप और देवा, भगवान मेरे रोग को दूर कर दो। रोग मतलब हमारे विकारी रोग है ना, ये विकार ही सबसे बड़े रोग है, उससे ही शौक लगता है, यानी दुखी होते हैं। तो बाप कहते हैं, सर्जन बन के अपने रोग को देखना है। सर्जन रोगी के रोग को देख के अपने अंदर नहीं ले लेता, तो उसका इलाज करता है। तो अपने रोग को सिर्फ कह के क्षमा नहीं मांगनी है, उसका इलाज करना है। और वो इलाज क्या है कि हमारी देखना है कि मैं श्रीमत पर चल, बाप के साथ मेरी प्रीत कितनी है, प्यार कितना है। प्यार से सुधार होता है, इसीलिए योग तो विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। श्रीमत पर देखने कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले भी बाप को याद करना अच्छा है, प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, वायुमंडल गंदा होता है, पब क्लब गंदगी ग्रस्तियों में वायुमंडल गंदा होता है, खराब वायुमंडल रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए, इसलिए जल्दी सोएंगे तो अमृत वेला जल्दी उठेंगे। फिर 1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है, सब सो गए ना तो देह भान से न्यारे हो गए, देह में आते ही देह की एक्टिविटी संबंध संपर्क वो वायुमंडल खराब करते हैं। तो बाप कहते हैं 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है, तो अपना तो है ही सहज राज योग, बल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा कैसे बाबा से बातें करता हूं, तो बाबा की मुरली में दोनों बातें हैं, शिव बाबा आदि मध्यंत का अपना और ड्रामा का ज्ञान देते हैं, और ब्रह्मा बाबा उस ज्ञान को विज्ञान बना के अपने पर अप्लाई करके उसके रिजल्ट को देख के अनुभव सुनाते हैं, ताकि हमको सहज हो जावे। तो मैं बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, मैं कैसे बाबा से बातें करता हूं, बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है, कैसे बात करो शिव बाबा से सवेरे सवेरे अमृत वेले, बाबा ये कैसा वंडरफुल ड्रामा है और कितनी खुशी की बात है, आप कैसे आकर के हमको पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को पलटा लेते हो, ये तो वंडरफुल ड्रामा है, बड़ा वंडर है, सारी दुनिया पवन बन जाती है। तो ये जो सवेरे योग नहीं लगता है तो बातें तो कर सकते हैं ना बाबा, ज्ञान का आनंद उस वर्णन में बाबा के साथ रूढ़ियान करो। तो जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। दूसरा फिर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को दूसरा ख्याल कौन सा है, शिव बाबा का तो ख्याल है बाबा के साथ बात करने का, ब्रह्मा बाबा को नहीं, ब्रह्मा बाबा को ख्याल है शिव बाबा से प्यार से बात करने का, बच्चों को होशियार बनाने का। और बाप कहते हैं कि कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें, कैसे नैया पार करें। तो जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे तुम बच्चों को आने चाहिए, तुम पुकारते हो ना हे पतित पवन आओ, अब मैं आया हूं, तो तुम पतित न बनो ना पवन बनो, पतित होकर के सभा में नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले भी आकर के बैठ जाते हैं, तो गाया हुआ है असुर आकर विघ्न डालने के लिए, विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने सिवाय रह नहीं सकते, अपने आप को आप पे ही नुकसान पहुंचाते हैं, झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना, अपना पाप लिख दो। नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे और गिर जाएंगे। आते हो कुछ लेने के लिए और कान कटा लेते हो, ये ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कलप पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, गोया अपना घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है, महारथी घोड़े सवार प्यादे सब है। तो तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मेला बाकी और क्या चाहिए। हाँ अपने बच्चों को भी जरूर संभालना है, ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, जिम्मेवारी बाबा पर छोड़ दो। हम तो आपके बन गए, नहीं आपको ये अपनी जिम्मेवारी अपनी है। बाप समझाते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। पहली बात है काम विकार की, भक्ति ने इस पर पुकारा कि हमको नग्न करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। ये कल पहले की बात है, आप सब द्रौपदी हैं, संगम पर बाबा हवन बनाते हैं। बाप के आने से पहले कोई भी पुकारते नहीं है, किसको पुकारेंगे, कौन सुनेगा उनकी बात। तो बाबा आया है तब पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर के फिर कहां जाएंगे, वापस जाएंगे। वहां तो यही यही समय है, संगम युग परिपावन बन, सबका सदगति दाता लिबरेटर एक बाप ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई को भी ऐसे नहीं कह सकते कि सुखी है, सदा के सुखी नहीं है। सबको कोई न कोई रोग आदि होता ही है, कर्म का हिसाब किताब सबका अपना है। कोई गुरु भी डिसेबल होते हैं, अंधा लूला भी होते हैं। जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो ऐसे बने ना। सतयुग में अंधा लूला आदि कोई थोड़ा ही होगा, कोई भी डिसेबल नहीं होगा। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। वो भक्ति मार्ग ही अलग है, सिर उतरने का मार्ग है। तो उतरने में और जीवन बंधन में आने में कितना समय लगता है। उतरने में और जीवन बंधन में आने में कितना समय लगता है। 5000 वर्ष 84 जन्म, और चढ़ने में 1 सेकंड, रियलाइजेशन 1 सेकंड की है। जीवन मुक्त बनने में तो 1 सेकंड लगता है, पर वो 1 सेकंड काम कब करता है, जब बाप की श्रीमत का पालन करो और बाप को याद करो। ऐसे नहीं एक सेकंड में हो गया, 50 साल 60 साल 70 साल से चल रहे हैं ज्ञान। वो रियलाइजेशन से मुझे श्रीमत मिली, उस पर चलते हैं, तो वो सेकंड की रियलाइजेशन इस थोड़े समय में मदद करती है। कपड़ा मैला होने में एक दिन लग जाएगा, बाहर जाएंगे तो साफ होने में सारा दिन नहीं चाहिए। मैला कपड़ा 2 दिन 4 दिन के बाद भी पहन, धुलाई करने में 4 दिन लगते हैं, आधा घंटा 15 मिनट लगेगा। तो श्रीमत पर चलने की बात, तो पावर श्रीमत में है, लक्ष्य में है, याद में है। अगर उनकी मत पर चलकर बाप को याद करे तो सेकंड नंबर वार तो है ना, बच्चों में भी नंबर वार है, टीचर्स में भी नंबर वार है। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो खुद जरूर कमजोर होना। तब कहते हो ना फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो, बाबा हमारे सेंटर पर बहन को भेज दो। बाबा कहते तुम होशियार बनो। ये भी भूल है, कोई आवे कोई ना, बनो खुद होशियार बनो ना। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्कर फिराओ और औरों को भी समझाओ। नहीं समझा सकते तो बाबा ने कहा था इसका मतलब तुमने समझा ही नहीं है, यानी धारण नहीं की है, बुद्धि ने समझ लिया। समझना माना प्रैक्टिकल में करना, बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी। ये तो सेकंड की बात है, तुम धंधे दौरी में ये भूल जाते हो। ब्राह्मणी भी तो यही कहेगी ना, मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं है कि हमको पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है, अहम भाव नहीं परंतु अपने पर अटेंशन देने के लिए। बस कहते हैं मतलब बाबा समझा रहे हैं कि खुद ये नहीं, कोई आवे तो किसी का सुधार करे, तुम अपने पर इतनी अटेंशन दो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो आ जावे, मुझे कोई नहीं चाहिए। ये भी समझने की बात है। कई बुद्धू लोग समझते नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। बाबा ने कहा तुमको ज्ञान तो अच्छा मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, दे अभिमान छोड़ो और मेरापन छोड़ो। मेरा सेंटर, हमारा सेंटर, इनका सेंटर, ये जिज्ञासु यहां क्यों जाता है, हमारे सेंटर का जिज्ञासु है, ये है देह अभिमान है, ये भूल है। शिव बाबा के सेंटर से हमारा थोड़ा ही है, मेरा का या शिव बाबा का सेंटर। तो तुमको ये क्यों होता है फलाने सेंटर पर क्यों नहीं जाता हमारा स्टूडेंट। एक कहां भी जाए बाबा, दूसरी पॉइंट, बाबा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या, मांगो नहीं सेवा करो। समझ आएगी यज्ञ क्या है, स्नेह जुटेगा, अपने बीज बोएंगे। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है, तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वरार्थ डायरेक्ट करते, इनडायरेक्ट करते थे। बाबा ने कहा इनडायरेक्ट करते थे, मिलता तो था, अभी तो डायरेक्ट। मैंने दान का भी महत्व है, डायरेक्ट करते हैं तो जैसे बाग लगाते हैं, भक्ति मार्ग में हम खेती करते थे, खेती करते थे, एक जन्म में किया दूसरे जन्म में ले लिया, फिर जन्म किया फिर ले लिए। अभी तो बाग लगा रहे हैं डायरेक्ट बाबा से, 2500 साल तो क्या, 5000 साल तक मिलता रहे, पेड़ लगा दिया ना हम, फल जन्म जन्मांतर, हमने भी खाया, बच्चों ने भी खाया, 21 जनरेशन ने भी खाया, भक्तों ने भी खाया। फिर सन्यासियों को भी बहुत दान देते हैं, नहीं तो गरीबों को दिया जाता है, ना कि शाहकारों को। इसमें भी अनाज का दान सबसे अच्छा होता है, सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है, ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते, तो परंतु अल्पकाल का है, देने वाला तो एक ही बाप है, जिसके थ्रू, किसी के थ्रू देते हैं। आप समझाते हैं तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको एक जब बाप ही किसी के थ्रू दिलाता था, अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल अपने पास रखती हूँ। डायरेक्ट आया तो बाग लगाते हैं, बागबान है ना, भक्ति मार्ग में किसके थ्रू मिलता था, अभी तो तुमको 21 जन्म का रिटर्न मिलेगा। दूसरी बात, समय की पहचान, मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुम ऐसे नहीं कहते थे मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं, अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो, कोई कहते हैं मकान बनाए उसमें हॉस्पिटल खोले, बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ, तो जो है उसमें खोल दो पहले, फिर भले मकान बनाओ, शरीर पर तो भरोसा नहीं है ना, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो, रूहानी हॉस्पिटल रूहानी कॉलेज बनाओ, बहुतों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्कील दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, हम रूहानी बच्चे। धारणा, श्रीमत पर अपने को देखना है कि विनाश काले मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। सच्ची प्रीत का मतलब क्या, और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। दूसरी प्रीत की निशानी, कोई भी असुरी कर्म करके, विकर्म करके असुर तो नहीं बनते, ऐसी चेकिंग करके स्वयं को परिवर्तन करना है। सेकंड पॉइंट, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं है इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख करके चलना है। वरदान, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव, स्वयं को सदा विजयी रतन समझ हर संकल्प पर कर्म करो तो कभी हार हो नहीं सकती। सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, और यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार मिलती है। अब बलिहार जाना है या धर्मराज की मार खानी? मार खानी पड़ेगी हार खाने वालों को। और जो बाबा के गले के हार बन गए, प्यार से बलिहार हुए, जीत पाली है, तो भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे देवताओं के, पुजारी बनेंगे, द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ तो अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन कब कर लेंगे, कभी हो जाएगा। कब शब्द कमजोरी को सिद्ध करता है, कुछ कमजोरी है तब कहते हैं कभी हो जाएगा। कब करेंगे? नहीं, अब करना है। अव्यक्त इशारा, हर्षित रहने के लिए नेचर और सरलशीलता, सहनशीलता, सरल नेचर, सहनशील। इस बेहद के स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूं, ये खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया आपदा समझती है, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले, साक्षी होकर खेल देखने वाले, ऐसी आपदा के रूप को खेल समझ सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं, आनंद स्वरूप बन के रहते हैं। ओम शांति।